माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर
परमहंस परिवचार्य स्तोत्र श्रीमद् अष्टावक्र ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय हो कृष्णपाद परमहंस परिवचार्य स्तोत्र श्रीमद् अष्टावक्र भक्ति सिद्धांत संस्थापक श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत नाथ श्रीवासदी गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मायापुर नदी धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगमय की यमुनामय की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की समवेद गौर भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू समर डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू समर डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू समर डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु वृंद गौर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हरे कृष्णा। आज हम पढ़ रहे श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंद अध्याय 15 सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश और श्लोक क्रमांक 53। इंद्रियानि मनस्युर्मो वाचि वैकारिकं मनः वाचं वन्न समान्याये तमोंकारेश्वरे न्यसेत् ओंकारं बिन्दुनादेतं तं तु प्राणे महत्यमुं इंद्रियानि मनुष्युर्मो वाचि वैकारिकं मनः वाचं वन्न समान्नाये तमोंकारेश्वरे न्यसेत् ओंकारं बिन्दुनादितं तं तु प्राणे महत्यमुम् इन्द्रियाणि मनस्युर्मो वाचि वैकारिकं मनः वाचं वन्न समाम्नाये तमोंकारेश्वरे न्यसेत् ओंकारं बिन्दुनादितं तं तु प्राणे महत्यमुम् शब्दार्थ इंद्रियानी इंद्रियां कर्म तथा ज्ञान संबंधी मनसी मन में उर्मो स्वीकृति अस्वीकृति की तरंगों में वाची शब्दों में वैकारिकम परिवर्तनों से दूषित मनः मन को वाचम शब्द को वन्न समाम्नाये सभी अक्षरों का समूह तम उस ओंकारे ओंकार के संक्षिप्त रूप में स्वरे कंपन में न्यसेत छोड़ दे ओंकारम संक्षिप्त शब्द ध्वनि को बिंदु ओंकार बिंदु में नादे ध्वनि स्पंदन में तम उसको तम उस नाद तू निस्संदेह प्राणे प्राणवायु में महति परम में अमुम जीव। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। मन स्वीकृति तथा अस्वीकृति की तरंगों से सदैव विक्षुब्ध होता रहता है, अतः इंद्रियों के समस्त कार्यकलाप मन को अर्पित कर देने चाहिए और मन को अपने शब्दों में अर्पित कर देना चाहिए, फिर इन शब्दों को समस्त वर्णों के समूह में अर्पित करना चाहिए, जिसे ओंकार के संक्षिप्त रूप को अर्पित कर दिया जाना चाहिए। ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में और उस नाद को प्राण में समर्पित करना चाहिए। जो शेष रूप में जीव बचे उसे परम ब्रह्म में स्थापित करें, यही यज्ञ की विधि है। तात्पर्य, मन सदैव स्वीकृति तथा अस्वीकृति द्वारा विशुद्ध होता है, जिसकी तुलना निरंतर ऊपर नीचे उठने वाली मानसिक तरंगों से की गई है। जीव अपनी विस्मरणशीलता के कारण भौतिक अस्तित्व की तरंगों में उतरता रहता है। अतएव श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी गीतावली में लिखा है, मिछे मायार वशे याच्छ बेशे खाच्छे हबुडुबाय। हे मेरे मन, तुम माया के वश में होकर स्वीकृति तथा अस्वीकृति की तरंगों द्वारा दूर ले जाए जा रहे हो। तुम केवल सहज भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तार दुख नाय। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को ही अपना परम आश्रय मान ले तो हम माया की इन सभी लहरों से बचे रह सकते हैं, जो मानसिक तथा इंद्रिय गतिविधियों एवं स्वीकृति अस्वीकृति के विक्षोभ के रूप में विभिन्न प्रकार से प्रकट होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम समस्त धर्मों को त्याग कर केवल मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। अतएव यदि हम कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा सहज रूप में भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में सदा रहकर उनके चरण कमलों में अपने आप को प्रस्तुत कर दें, तो हमें वैकुंठ लोक वापस जाने हेतु प्रबंध करने का अधिक कष्ट न उठाना पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह अत्यंत सरल है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामय्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद्भागवत कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और सभी भक्तों की कृपा की याचना करके, विशेष करके महाराज जी हैं यहाँ पर, तो कृपा की याचना करते हुए हम इस श्लोक पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर इस श्लोक में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं और यहां पर अष्टांग योग की पद्धति के बारे में समझा रहे हैं और कैसे एक अष्टांग योगी को अपना शरीर कैसे त्याग करना है उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। और हम श्रीमद् भागवतम में अनेक जगहों पर जैसे चौथे स्कंद में पृथु महाराज के संबंध में और ऐसे अलग अलग जगह पर हम अष्टांग योगियों के बारे में या अष्टांग योग पद्धति से एक व्यक्ति अपना शरीर कैसे त्याग देता है उसके बाद उसका वर्णन हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं। तो जब हम श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं तो श्लोक केवल श्लोक समझना ही मुश्किल होता है, ये अष्टांग योग का जो पद्धति है तो करने की बात तो बहुत दूर है। स्पेशली आजकल के लोगों के लिए ये सब समझना करना ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन सिद्धांत क्या है ये हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो सिद्धांत यह है कि जो अष्टांग योगी होता है वो अपने मन और इंद्रियों को संयत करने का प्रयास करता है और अपना भौतिक शरीर, भौतिक मन, बुद्धि इन सब चीजों से अनासक्त होने का प्रयास करता है। तत्वज्ञान के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा वो अनासक्ति उत्पन्न करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार वो समझने का प्रयास करता है कि कैसे उसके मन, इंद्रियां वो सब उसके नहीं हैं, तो उसका स्रोत क्या है वो ढूंढने का प्रयास करता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले मन। अतएव इंद्रियों के समस्त कार्यकलाप मन को अर्पित कर देना चाहिए, तो इंद्रियों को मन में अर्पित करना चाहिए। इंद्रियानि मनस्युर्मौ वाची वैकारिकम मनः, और उसी प्रकार मन को अपने शब्दों में अर्पित कर देना चाहिए। तो इस प्रकार हर एक भौतिक चीज जो है उसका जो स्रोत क्या है वो ढूंढकर उस यह समझना चाहिए कि यह चीज जो है वो मेरी नहीं है, वो उस चीज का है जो स्रोत है। और अंततः जितने भी भौतिक चीज हैं, जो भी शरीर है, मन है, बुद्धि है, वो सब अंततः किसके हैं? तो इसलिए अंत में आया है महति। महति का मतलब है परम। तो अंततः जितने भी भौतिक चीज हैं वो सब परम सत्य, परम ब्रह्म से आते हैं। तो इस प्रकार जब व्यक्ति समझ जाता है कि मेरा शरीर, मन इत्यादि ये सब चीज मेरे नहीं हैं, वो सब परम सत्य के हैं, भगवान के हैं, इस प्रकार जब वो समझ जाता है तब वो इस शरीर से, मन से, बुद्धि से अनासक्त होता है। तो ये पद्धति है एक अष्टांग योगी को अपने मन और इंद्रियों को संयत करने का और भौतिक शरीर और मन से विरक्त होने का, ये तरीका है अष्टांग योगियों के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स आजकल कलयुग में ये सब संभव नहीं है, तो इसलिए इस तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कलयुग में बहुत आसान तरीका है, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रंगता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तात्पर्य में मुख्यतः श्रील प्रभुपाद जी मन के बारे में समझा रहे हैं, जो अत्यंत प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं। तो इस भौतिक जीवन का मूल कारण है मन, और इस भौतिक जीवन से मुक्त होने का कारण भी मन ही है। तो आज हम तीन पॉइंट्स पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट यह है कि इस मन का स्वभाव क्या है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि इस भद्द जीवन में यह मन के कारण क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। और अंततः भक्तिमय जीवन में हम इस मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में, इन तीन पॉइंट्स के बारे में हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में बताया गया है कि किस प्रकार यह मन जो है अत्यंत शक्तिशाली है। तो हम जानते हैं किस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग के बारे में बताते हैं तो वो सब सुनने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि ये सब मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यह मन जो है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद्रिणम तस्याहम निग्रह मन्ये वायो रिवस दुष्करम। तो यह मन जो है, अर्जुन कहते हैं बहुत ही चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति, प्रमाति बहुत विचलित रहता है, और बलवद अत्यंत बलवान है, दृढ़म दृढ़ है, और इस मन को नियंत्रित करना हवा को नियंत्रित करने से भी ज्यादा मुश्किल है। साधारण हवा नहीं, वायु रेवस दुष्करम। तो ये जो जैसे कि कभी कभी साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो ऐसे तूफान को कौन नियंत्रित कर सकता है? कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? नहीं। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि इस मन को नियंत्रित करना उस तूफान को नियंत्रित करने से भी ज्यादा मुश्किल है। यह मन का स्वभाव है। तो इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि यह मन इतनी शक्तिशाली क्यों है। तो श्रीमद् भागवतम में जटभरत महाराज रघुन को समझाते हुए बताते हैं कि यह मन इतनी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि यह शक्ति प्राप्त होता है तीन गुणों के वजह से। तो मन नियंत्रित होता है तीन गुणों के द्वारा, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। तीन गुण का मतलब है भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति जो है वो अत्यंत शक्तिशाली है, और इस माया शक्ति के द्वारा यह मन जो है बहुत शक्तिशाली बन जाता है। और जटभरत उदाहरण देते हैं एक कि किस प्रकार मन शक्तिशाली है। तो वो कहते हैं कि जैसे एक अनियंत्रित पागल हाथी होता है, कितना शक्तिशाली होता है, तो उसी प्रकार यह जो अनियंत्रित मन होता है वो हाथी के समान है। तो इसलिए इस मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए जटभरत श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद में समझाते हैं कि इस मन को नियंत्रित करते समय अत्यंत अलर्ट रहना चाहिए। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि मैं इस मन को आसानी से नियंत्रित करूंगा, नहीं, वो संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, दुष्करम अत्यंत कठिन है। तो इसलिए उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक शिकारी होता है, शिकारी शिकार करता है और एक किसी भी जंगली जानवर को एक जाल में डालकर वो लेकर जाता है, लेकिन लेकर जाते समय वो अत्यंत सावधान रहता है। क्यों सावधान रहता है? क्योंकि किसी भी समय, किसी भी क्षण वो जंगली जानवर जो है उस व्यक्ति पर आक्रमण कर सकता है। तो उसी प्रकार यह मन जो है, अगर हम सोचेंगे कि अब मेरा मन नियंत्रित हो गया, लेकिन हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षण यह मन जो है अनियंत्रित हो सकता है। तो इसलिए मन के साथ सावधानी के साथ डील करना यह अत्यंत आवश्यक है। और इसी मन के वजह से हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। इस मन के वजह से, तीन गुणों के प्रभाव से, हम सोचते हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्वामी हूं, इस प्रकार हम सोचते हैं। जैसे भगवद गीता 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान
कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु। तो भगवान कहते हैं पुरुष प्रकृति स्तोहि, जब जीव सोचता है कि मैं पुरुष हूं, मैं भोक्ता हूं, तब वो भुंगते प्रकृति जान गुना, तब वो भोग करने का प्रयास करता है। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य, ये तीन गुणों के कारण से सद असद योनि जन्मसु, अलग अलग योनियों में जीव को जन्म लेना पड़ता है। तो इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सब क्या बनना चाहते हैं? भोक्ता बनना चाहते हैं, पुरुष बनना चाहते हैं। और यही कारण है भौतिक जगत में आने के लिए और भौतिक जगत में फंसने के लिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता का प्रिंटिंग के लिए जापान गए, वहाँ पर डाई निपॉन कंपनी है, तो डाई निपॉन कंपनी से भगवद गीता का प्रकाशन करने के लिए वहाँ पर गए, उस काम के लिए गए थे। तो वहाँ पर जितने भी वहाँ पर मैनेजर्स थे, सीईओ से सबसे बातचीत किया उन्होंने, मीटिंग लिया, उसके बाद सब लोग चले गए थे। एक नवयुवक व्यक्ति वहां पर, एक नवयुवक मैनेजर वहां पर था, तो श्रील प्रभुपाद जी उनसे बात करने लगे और श्रील प्रभुपाद जी ने उसे पूछा कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उस व्यक्ति ने कुछ बोला नहीं। उस व्यक्ति ने क्या किया, वहां पर वो मीटिंग का जो टेबल होता है, वहां पर जितने भी मैनेजर्स और सीईओस थे, सबके विजिटिंग कार्ड्स थे। तो ये व्यक्ति ने क्या किया, सबका विजिटिंग कार्ड्स लिया, इकट्ठा किया, और जो खुद का विजिटिंग कार्ड है वो नीचे था, वो नीचे से ऊपर रख दिया। तो बिना बोले इस व्यक्ति ने उसका जीवन का लक्ष्य क्या है वो बताया। जीवन का लक्ष्य क्या है? बॉस बनना। हाँ, यह उसने बताया, मेरा जीवन का लक्ष्य है इस कंपनी का सबसे टॉप मैनेजर बनना, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार हर एक जीव वो केवल बॉस बनना चाहता है, वो पुरुष बनना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है, लेकिन यही मानसिकता जो है ये बंधन का कारण बनता है। तो इस प्रकार भागवतम में सुखदेव गोस्वामी और एक उदाहरण देते हैं मन के बारे में। कहते हैं कि यह मन जो है एक वेश्या के समान है, और जिस प्रकार एक वेश्या अलग अलग पुरुषों से संग करने का प्रयास करती हैं, भोग करने का प्रयास करती हैं, उसी प्रकार यह मन जो है अनियंत्रित मन भोग करने का प्रयास करता है। और कभी कभी जो वेश्या है वो क्या करती है, वो सोचती है कि मेरा जो पति है, ये पति मेरे जीवन में एक बाधा है, तो वो क्या करती है, कुछ गुंडों को लेकर, गुंडा और डकैत लोगों को लेकर उस पति का वध कर देती है। होता ना ऐसा? हाँ, आप एटलीस्ट मूवीज में आपने देखा होगा ऐसे होता है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उसी प्रकार मन जो है, मन ये छह अनर्थ, जो गुंडा और डकैत जो है वो छह अनर्थों से तुलना किया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो मन ये छह अनर्थों को लेकर, उनकी सहायता लेकर जो योगी का बुद्धि है, योगी का बुद्धि वो पति से तुलना किया है, योगी का बुद्धि को खत्म कर देता है। तो इस प्रकार मन जो अनियंत्रित मन, वो बुद्धि को भी नियंत्रित करता है। नॉर्मली जो बुद्धि है मन को नियंत्रित करता है, लेकिन जो अनियंत्रित मन होता है वो इतना प्रभावशाली होता है कि वो बुद्धि को भी नियंत्रित करता है। तो आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि कभी कभी जो एक बीमारी के लिए एक दवाई काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि बीमारी बहुत ही प्रगाढ़ है, तो इसलिए दवाई काम नहीं करता है। तो उसी प्रकार कभी कभी मन जो है इतने प्रभावशाली हो जाता है कि वो बुद्धि को भी नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार जो अनियंत्रित बुद्धि है, जो माया के वश में है, अत्यंत प्रभावशाली है और यही मन बद्ध जीवन का कारण है। इसलिए यहां पर श्री भक्तिविनोद ठाकुर ये श्लोक कोट करते हैं, मिछे मायार वशे याच्छे बेशे कच्छे हबुड़ुबु भाई। हे मेरे मन, तुम माया के वश में होकर स्वीकृति तथा अस्वीकृति की तरंगों द्वारा दूर ले जाए जा रहे हो। तो यहां पर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं माया के वश में होकर जो जीव है वो इस भौतिक संसार के तरंगों में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे इस प्रकार फेंका जा रहा है। ये बद्ध जीव इस प्रकार, इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, इस भौतिक जगत में बद्ध जीव जो है माया उसको फुटबॉल की तरह लात मारती है। आपने देखा होगा जो फुटबॉल खेलते हैं तो एक व्यक्ति लात मारता है, फिर वो बॉल जो है दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है फिर से लात मारता है, और फिर तीसरा व्यक्ति के पास जाता है वो क्या करता है फिर से लात मारता है। तो इस प्रकार वो जो फुटबॉल जो है वो केवल लात ही खाता है। उसी प्रकार बद्ध जीव इस भौतिक संसार में माया के द्वारा केवल लाते खाता है, और कभी इस यह शरीर, कभी सुअर का शरीर, बिल्ली का शरीर, देवता का शरीर, इस प्रकार अलग अलग शरीर लेना पड़ता है। कुछ चॉइस नहीं होता है उस टाइम, लेना ही पड़ता है अलग अलग शरीर। तो इस प्रकार ये सब मन के कारण है। इसलिए इस मन के वजह से क्या क्या परिणाम होता है बद्ध जीवन में, जड भरत महाराज रघुगुण को बताते हैं। तो वो कहते हैं नयावदेतन मन आत्मलिंगम संसारतापावपनम जनस्य यशोक महामय राग लोभ वैरानुबंधम ममताम विदत्ते। तो जड भरत कहते हैं कि जब आत्मलिंगम, इस मन के वजह से आत्मा अलग अलग उपाधि स्वीकार करता है। तो इसलिए लोग अलग अलग उपाधि स्वीकार करते हैं, मैं भारतीय हूँ, अमेरिकन हूँ, या भारत के लोग अलग अलग स्टेट्स के लोग होते हैं, कोई सोचता है कि मैं पंजाबी हूँ, कोई सोचता है कि मैं साउथ इंडियन हूँ, इस प्रकार अलग अलग उपाधि स्वीकार करते हैं। ये सब मन के वजह से हैं, मन आत्मलिंगम, और इसका वजह से क्या होता है संसार ताप वपनम। इस संसार के जो अलग अलग ताप हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सबको भुगतना पड़ता है, और इसका परिणाम क्या है यह शोक महामय राग लोभ वैर अनुबंधम। तो ये अलग अलग परिणाम बता रहे हैं, क्या है परिणाम, शोक मोह राग, राग का मतलब है आसक्ति, लोभ वैर शत्रुत्व, इन सब चीजों के वजह से आत्मा जो है बंध जाता है इस भौतिक जगत में। और फिर ममताम, यह है मिथ्या अहंकार के वजह से वो सोचता है कि शरीर मेरा है और जितने भी सब चीज हैं वो सब मेरे हैं। इस प्रकार बद्ध जीव इन अलग अलग परिणामों के वजह से इस भौतिक जगत में बंध जाता है। तो इसलिए इस बद्ध जीवन से मुक्त होने के लिए इस मन को नियंत्रित करना अत्यंत जरूरी है। अगर इस मन को हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो फिर ये केवल बंधन का ही कारण बनेगा। इसलिए श्री प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि इस कलयुग में इस मन को नियंत्रित करने का बहुत आसान तरीका है, और वो क्या है, यह हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का जप करने से, भक्ति करने से हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारा अंतिम उद्देश्य है यह सिद्धांत को जानना। कौन से सिद्धांत? जीव कृष्णदास ए विश्वास कौरलेतार दुखनाय। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो बहुत सरल साधारण सिद्धांत है कि हम भगवान के दास हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है केवल दास ही नहीं है बल्कि क्या है? दास 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 अनुदास। ये हर एक जीव की स्वाभाविक स्थिति है। हर एक जीव जाने या न जाने वास्तव में सेवा ही करता है, सेवक ही होता है। अगर कोई सोचता है कि मैं किसी का सेवक नहीं हूं, मैं केवल मालिक हूं, केवल स्वामी हूं, लेकिन वो अपने मन और इंद्रियों का दास ही बनता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कभी कभी जो कुत्ता होता है, कुत्ता सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी का दास नहीं हूं, लेकिन जब मालिक बुलाता है तो उसको जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं मालिक का आदेश को स्वीकार नहीं करूंगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा। तो और एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कि बहुत बड़ा हाथी होता है, बहुत शक्तिशाली, लेकिन उस हाथी को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कभी हम देखते हैं हाथी के ऊपर एक छोटा सा लड़का बैठता है और उसके हाथ में क्या होता है, जो क्या कहते हैं, अंकुश। छोटा सा अंकुश होता है और छोटा सा लड़का है, और वो हाथी कितना बड़ा है, लेकिन और एक क्षण में वो हाथी उसको खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी उस छोटे से लड़के के आदेश पर वो हाथी चलता रहता है, उसके आदेशों को पालन करता है। क्यों? क्योंकि वो हाथी जो है वो अपने मन से नियंत्रित है, और वो हाथी सोचता है अगर मैं इस छोटे लड़के का आदेश को पालन नहीं करूंगा मुझे खाने को नहीं मिलेगा, इस प्रकार वो सोचता है और इसलिए वो आदेश पालन करता है। तो इस प्रकार व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं। प्रभा जी और एक उदाहरण देते हैं, वही कुत्ते का उदाहरण। जो कुत्ते का मालिक होता है वो सोचता है कि मैं कुत्ते का मालिक हूं, लेकिन हम देखते हैं सुबह सुबह लोग जाते हैं कुत्ते के साथ, अमीर लोग होते हैं वो कुत्ते को लेकर जाते हैं, और वो सोचते हैं, वो सोचता है कि मैं कुत्ते का मालिक हूं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, जहां कुत्ता लेकर जाता है मालिक पीछे पीछे जाता है। तो कौन मालिक है, कौन दास है? और जो विदेशों में हम देखते हैं कि जब कुत्ता मलमूत्र त्यागता है तो सड़क पर कुत्ते को मलमूत्र त्यागना वो दंडित है, तो इसलिए मालिक क्या करता है, वो मलमूत्र को कलेक्ट करता है बैग में। तो अभी कुत्ते का मालिक कौन है, कुत्ता मालिक है या व्यक्ति मालिक है? लेकिन माया के प्रभाव से हालांकि हर एक व्यक्ति वास्तव में सेवक होता है, दास होता है, लेकिन फिर भी माया के वशीभूत होकर व्यक्ति मोहित होकर सोचता है कि मैं मालिक हूं, मैं स्वतंत्र हूं, कोई स्वतंत्र नहीं है। तीन गुणों की वजह से सब बंधे हुए हैं। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। सब तीन गुणों, तीन गुण जो है वो रस्सी के समान है, और ये रस्सियों से, ये तीन गुणों से सब बंधे हुए हैं, और इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र तरीका क्या है, माम एव ये प्रपद्यन्ते। एव का मतलब है यही तरीका है और दूसरा तरीका नहीं है। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते। इस माया से मुक्त होने के लिए एकमात्र तरीका है भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना। तो अभी जो तीसरा पॉइंट है, इस अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने का तरीका क्या है, एक तरीका जो श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना। जड़ भरत महाराज रघुगुण को बताते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तरीका बताते हैं इस अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने के लिए। तो जड़ भरत कहते हैं भ्रातृत्वम एनम तद अधब्रवीर्यम उपेक्षयाध्येदितम अप्रमत्तः गुरोर हरेश्चरणा उपासनास्त्रो जहि व्यलीकम स्वयं आत्ममोषम। तो कहते हैं कि ये जो मन जो है ये क्या है, भ्रातृत्वम का मतलब है शत्रु है, वैरी है। जो अदभ्रवीर्यम, अदभ्रवीर्यम का मतलब है बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली है। तो अभी जो मन जो है, हम सबका अनुभव होगा, मन हमेशा हमें कुछ न कुछ आदेश देते रहता है, ये करो वो करो ये करो वो करो। तो हम जप करने के लिए बैठते हैं, मन क्या कहता है, मन कहता है नहीं ये सुबह का समय सोने का समय है, ये क्या जप करने का समय है। तो इस प्रकार मन अलग अलग चीज बोलते रहता है। हम क्लास में बैठे हैं, मन बोलता है अरे ये क्या क्लास है, बोरिंग है, प्रसाद कब आएगा। तो मन में वही चलता रहता है, तो प्रसाद तो बहुत नजदीक है, यहाँ पर ही है, तो वही मन में चलता रहेगा, ये कब खत्म होगा, प्रसाद कब मिलेगा। इस प्रकार मन बार बार कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कुछ ना कुछ स्वीकार करता है और कुछ ना कुछ अस्वीकार करता है। संकल्प विकल्प यहां पर भी बताया गया है, स्वीकृति अस्वीकृति, ये मेरे इंद्रतुप्ति के लिए अच्छा है मैं स्वीकार करता हूं, अच्छा नहीं है स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार बार बार मन कैलकुलेशन करते रहता है। तो इसलिए यहां पर जड़ बद बता रहे हैं इस मन के साथ क्या करना चाहिए, उपेक्षा उपेक्षा। तो जब मन ऐसे बहुत सारी बातें कहता रहता है जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल न हो तो क्या करना चाहिए, उपेक्षा। मन के आदेशों को पालन नहीं करना चाहिए। किसके आदेशों को पालन करना चाहिए, भगवान और गुरु के आदेशों को पालन करना चाहिए। तो इसलिए यहां पर जड़ भरत कहते हैं कि इस मन को उपेक्षा करना चाहिए, मन के आदेशों को पालन नहीं करना चाहिए अगर वो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। जैसे कि मन के मुख्यतः तीन कार्य हैं, इंग्लिश में कहते हैं थिंकिंग फीलिंग विलिंग। थिंकिंग का मतलब है सोचना, फीलिंग का मतलब है अनुभव करना, और विलिंग का मतलब है इच्छा करना। ये तीन मन के कार्य हैं। तो ये तीनों कार्यों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, सवई मन कृष्ण पदारविंदयो। तो सोचना, तो हमेशा भगवान के बारे में सोचना, भगवान की सेवा के बारे में सोचना, या यहाँ पर हम वृंदावन में हैं तो हम भगवान की कथा के बारे में हम सुन सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। और उसी प्रकार दूसरा चीज क्या है, फीलिंग अनुभव करना। तो जो भगवान के लिए अनुकूल है उन चीजों के बारे में सोचना, जो भगवान पसंद करते हैं उन चीजों के बारे में सोचना। क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है, शरणागति का मतलब है अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उन चीजों को स्वीकार करना, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उन चीजों को छोड़ देना। और उसी प्रकार इच्छा करना, तो बहुत सारी इच्छाएं आ सकते हैं मन में, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, उन्हीं इच्छाओं को स्वीकार करना, अगर भक्ति के लिए प्रतिकूल है उन इच्छाओं को छोड़ देना। तो इस प्रकार हम मन को कृष्ण भावना भावित, कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं। और अगर मन ऐसे कुछ आदेश देता है जो हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल है तो फिर क्या करना चाहिए, उपेक्षा छोड़ देना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, गुरोर हरेश चरण उपासना अस्त्र। तो जड़ भरत कहते हैं इस मन को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र क्या है। तो अस्त्र चाहिए इस मन को नियंत्रित करने के लिए, और वो अस्त्र क्या है? गुरुर हरे चरण उपासना। बहुत आसान है समझना, भगवान श्री कृष्ण और गुरु के चरणों की उपासना करना, ये तरीका है। तो अगर हम हमेशा भगवान और गुरु के आदेशों को के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो फिर हम सोचते रहेंगे कि इन आदेशों को कैसे पालन करूं। तो ये अस्त्र हैं, जड़ भरत कहते हैं, मन को नियंत्रित करने के लिए। तो इस प्रकार हालांकि मन बहुत सारी चीज बताता है, जैसे कि हम सबका अनुभव होगा, जब हम तो अभी कार्तिक का महीना है, हम सब चाहते हैं कि सुबह मंगल आरती अटेंड करें, तो हम अलार्म भी लगाते हैं, लेकिन जब अलार्म बजता है मन क्या कहता है? नहीं, और 2 मिनट सो, और 2 मिनट सो जाओ, और फिर 2 मिनट के बाद और 2 मिनट, इस प्रकार मन कहते रहता है। लेकिन जब हम भगवान और गुरु के आदेशों को स्मरण करेंगे कि मेरा गुरु का आदेश है, वरिष्ठ वैष्णव का आदेश है कि सुबह मंगलाती अटेंड करना है, तो फिर जो मन का आदेश है उसको हम क्या करेंगे? उपेक्षा करेंगे, और फिर गुरु के आदेश को पालन करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी किताबों में कितने सारे आदेश दिए हैं, इसलिए जब हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हम इन आदेशों को हमें पता होगा, फिर हम इनको पालन करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें, और श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी आदेश हैं उन आदेशों को अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार गुरुर हरे चरण उपासना, तो उपासना जो है, उपासना का एक मतलब है पूजा करना, ठीक है, वो तो कोई भी कर सकता है, पूजा कोई भी कर सकता है, वो आसान है, लेकिन असली पूजा क्या है? उनके आदेशों को पालन करना। जब उनके आदेशों को हम पालन करते हैं तब उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हर दिन सुबह जब हम उठते हैं इस मन को मारना चाहिए, पिटाई करना चाहिए, किससे? जूतों से, और सोने से पहले झाड़ू से। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जूते लेकर सर को मारना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि स्पेशली सुबह के समय, शाम के समय हम पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में श्रवण करना, नाम जप करना, इन कार्यों में यह समय को बिताना चाहिए। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने हमें एक मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है और एक इवनिंग प्रोग्राम भी दिया है। तो श्री प्रभुपाद जी के मॉर्निंग प्रोग्राम हम जानते ही हैं, मंगल आरती अटेंड करना, तुलसी आरती अटेंड करना, जप करना, श्रीमद् भागवतम क्लास अटेंड करना, तो ये है मन को मानना। हालांकि मन पसंद नहीं करता है ये सब कार्य करना, लेकिन फिर भी जबरदस्ती जब हम मन को समझाएंगे और इन कार्यों में लगे रहेंगे, ये है मन को मानने के समान। और उसी प्रकार श्री प्रभुपाद जी ने एक इवनिंग प्रोग्राम भी दिया है, शाम को समय संध्या आरती, भगवद गीता क्लास, सोने से पहले कृष्ण बुक पढ़ना, तो ये सब क्या है? ये मन को मानने के समान है। तो हालांकि मन इन सब कार्यों को पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी जब हम सोचते हैं, समझते हैं कि ये सब गुरु के आदेश हैं, श्री प्रभुपाद जी के आदेश हैं, मुझे पालन करना ही है, तो इस प्रकार सोचकर जब हम ये सब आदेशों को पालन करेंगे, तब धीरे धीरे जो मन है वो नियंत्रित होता है। और एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस प्रकार मन को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, यह अत्यंत आवश्यक है। तो यहां पर जब हम धाम में आते हैं तो इस प्रकार मन को प्रशिक्षण देना यह जरूरी है, श्रवण के माध्यम से, सेवा के माध्यम से प्रशिक्षित करना यह अत्यंत आवश्यक है। और फिर जो भगवान ने भगवद गीता के 8वें अध्याय में कहा है, अगर हम इस मनुष्य जीवन को परिपूर्ण करना चाहते हैं तो क्या जरूरी है? अंतकाले चमामेवा स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तो अंतिम समय मृत्यु के समय यह जो मन और बुद्धि जो है वो भगवान के बारे में स्मरण करना ये अत्यंत आवश्यक है अगर हम चाहते हैं कि हम भगवत धाम धारा। तो इस प्रकार इस मन और जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार इस सूक्ष्म शरीर को कृष्ण भावना भावित बनाना और इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा भगवान कृष्ण के बारे में स्मरण करना ये अत्यंत आवश्यक है। तब अगर हम पूरे जीवन में ये प्रशिक्षण लेते हैं और हम नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो पूरा जीवन भर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं मन को ताकि अंतिम समय मृत्यु के समय जब अत्यंत शरीर और मन को अत्यंत पीड़ा होती है बहुत ही कठिन परिस्थिति है तो उस समय अगर हम चाहते हैं कि मन के द्वारा हम भगवान को स्मरण करें तो ये पूरे जीवन में प्रशिक्षण ट्रेनिंग की जरूरत है। तो यहाँ पर जो भी भक्तिमय कार्य हम कर रहे हैं ये सब प्रशिक्षण है ट्रेनिंग है ताकि अंतिम समय भगवान की कृपा से भगवान का स्मरण भगवान का नाम हम ले सके और भगवत नाम जा सके। तो ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि हमें श्रील प्रभुपाद ने हमें एक बहुत सुंदर अवसर दिया है हम यहाँ पर श्री वृंदावन धाम में आ सकते हैं यहाँ पर भक्तों की संगति में हम श्रवणम कीर्तनम कर सकते हैं हम सेवा कर सकते हैं भक्तों की संगति में और इस प्रकार हम मनुष्य जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसको कुछ प्रश्न या टिप्पणी है?